श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 7। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें भगवान जीव के संबंध स्पष्ट रूप से अपने से ही दिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण से, और हमारी जो स्थिति है भगवान के संबंध में वो समझ में आती है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनसष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये इंद्रियां तो 11 होती हैं तो 6 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां ही संयम करना मुश्किल होता है। आंख, नाक, जिह्वा और कान और स्पर्श यानी त्वग, तो ये अपने इंद्रिय के विषयों की तरफ भागना चाहती हैं और उनका जो केंद्र है वह है मन, जो अनादि काल से जो संस्कार हैं उसका वो स्टोर हाउस होता है, गढ़ होता है। तो यहां पे भगवान बोल रहे हैं बहुत सुंदर बात कि जितने भी जीव हैं वो उनके ही अंश हैं, मम एव मतलब और किसी देवी देवता के नहीं। तो अगर हम किसी और देवी देवता की पूजा कर भी रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि हम अपने संपन्न समृद्ध सशक्त पिता कृष्ण को छोड़ करके किसी और हीन व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं जो कृष्ण से हीन है। ध्यान दीजिए, हमसे हीन नहीं है लेकिन कृष्ण से तो हीन ही है, कृष्ण के समान कोई भी नहीं है। तो जिस प्रकार से अपने पिता का, एक पिता का अपने पिता अपने बच्चों से सहज रूप से प्रेम होता है, वैसा प्रेम देवता हमसे नहीं कर सकते हैं। तो ये संबंध देखते हुए जीव को भगवान कृष्ण के प्रति ही सेवा की अपनी जो प्रवृत्ति है, सनातन प्रवृत्ति, उसको डायरेक्ट करना चाहिए यानी कि निर्देशित करना चाहिए। तो हमने श्लोक में यह सीखा है कि हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, शाश्वत का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि बद्धावस्था में हम लोग अंश हैं और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, भगवान से, भगवान में मिल जाएंगे, अपितु तब भी हम शाश्वत रूप से भगवान के अंश ही रहते हैं। तो फिर से इस बात को समझ लीजिए, शाश्वत अंश है अर्थात मुक्ति के पर्यंत, मुक्ति के बाद भी हमारी सत्ता है वो सेवक की ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक वैष्ट तत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहां पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, मायावादी लोग कहते हैं कि जैसे एक आकाश है तो आकाश जो है वो विस्तृत रूप से बाहर है, बहुत बड़े रूप में है, लेकिन वही आकाश एक घड़े में कट जाता है। तो जो आकाश घड़े में है, जैसे ही वो घड़ा टूट जाता है तो वो आकाश, छोटा आकाश जो घड़े में था, वो बड़े आकाश में मिल जाता है। लेकिन देखिए, मैं समझ में आना चाहिए कि ये धारणा ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, वह भौतिक आवरण से कट गया या घट गया या सेपरेट हो गया और फिर वह जीव का रूप ले लिया, और जब शरीर से मुक्त हो जाता है जीव तो वापस उस ब्रह्म में मिल जाता है। यह विवेचना ठीक नहीं है क्योंकि भगवद गीता इस बात का समर्थन नहीं करती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला है कि जीवात्मा जो है वो अविनाशी है, और यहां पर भी बोल रहे हैं कि सनातन रूप से वो उनका अंश है। तो यानी कि भगवान का जो अविनाशी अंश है जीव, वह अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखता है। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में बहुत सुंदर बोलते हैं और वो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है किसी को साक्षात्कार होगा, अगर उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी वह नष्ट हो जाती है तो साक्षात्कार होगा किसको। ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि आत्मा का जो व्यक्तित्व है कि मैं हूं, ये हमेशा रहता है। बस इसको शुद्ध होना है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये बात अगर समझ करके कृष्ण की सेवा करता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। इसको समझ लेना चाहिए, मतलब भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। कृपया ये मत पूछिएगा कब, अनादि रूप से अनादि काल से भगवान ने अपने को विस्तार किया हुआ है। और कुछ भगवत तत्व है जो भगवान के समान शक्तिशाली हैं, जैसे कि नारायण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जो कि भगवान कृष्ण के ही विस्तार है, और वह एक उस मोमबत्ती की तरह है जो मूल मोमबत्ती के समान ही प्रकाशमान होती है, लेकिन वह एक मूल मोमबत्ती जो है वो रहती है। तो दीपार चिरे भी दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। समान धर्म मतलब जो अन्य विष्णु तत्व है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी जो भगवत्ता है, उनका जो स्रोत है, वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन जीवात्मा जो है वो गौण विस्तार है, इन्हें विभिन्न अंश कहा जाता है, और ये भगवान नहीं है, भगवान के सेवक हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश हैं और जीव विभिन्नांश हैं, पृथकीकृत अंश हैं, सेपरेटेड। तो अब आप इन शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नृसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। ये भी मैंने समझा दिया अभी। क्यों होते हैं? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव भगवान के विभिन्न रूपों के प्रति आकर्षित होते हैं और विभिन्न रसों में आकर्षित होते हैं। तो इस कारण से भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तार करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों से विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान करने के लिए। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। ये भी समझ में आ गया आपको। भगवान के स्व अंश सदैव विद्यमान रहते हैं, इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव को आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और इसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप शायद समझ नहीं रहे होंगे, हम प्रयास करते हैं समझाने का। एक बात कि विभिन्न वैकुंठ लोग होते हैं, ये तो आप समझानते हो श्लोक नंबर 6 से। उन विभिन्न वैकुंठों में भगवान विभिन्न विष्णु मूर्तियों के रूप में रहते हैं, कहीं पे राम रूप में, कहीं नरसिंह रूप में, कहीं वामन रूप में, कहीं ऐसे करके। तो जो विभिन्न प्रकार के विष्णु मूर्ति रूप हैं, उन पे उनके प्रति विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न विभिन्न रसों में, दास भाव में, सेवक के रूप में, ऐसे करके वो आकर्षित होते हैं। तो अब वो जीव जो है वो अलग अलग विष्णु लोकों में भगवान विष्णु की सेवा करते रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा भगवान बन जाता है और भगवान में मर्ज हो जाता है, सनातन रूप से सेवा में लगे हैं। इस जगत में भी जो जीव हैं वह हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। नात्वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूंगा, ये राजा नहीं रहेंगे। बहुत ही गुह्य ज्ञान है, कभी भी आत्मा मरती नहीं है, हम लोग कभी मरने वाले नहीं है। तो यानी कि हम लोग सनातन हैं। और दूसरा बात है, भगवान का अंश होने के नाते जैसे एक महान अग्नि है, तो एक महान अग्नि से निकलने वाली चिंगारी, तो उस चिंगारी में भी वही गुण वही ताप होता है जो एक महान अग्नि में होता है। लेकिन एक और दिक्कत यह है कि वो चिंगारी अगर पृथ्वी पे गिरती है तो उसके बुझने की संभावना होती है। तो यहाँ ये बात हो रही है कि जीव के पास भी स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता इसी बात की है कि वो माया की सेवा करे या कृष्ण की सेवा करे, इसके अतिरिक्त कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक और बहुत ही प्रेरणादायक बात यह है कि भले ही जीव अनादि काल से माया की सेवा कर रहा है, बद्ध अवस्था की बात कर रहा हूं, लेकिन और यानी कि इस प्रकार से हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है प्रेम करने की, सेवा करने की, भले ही माया उसका दुरुपयोग कर रही है, उसको भ्रमित कर रही है कई जन्मों से, अनादि काल से, लेकिन उसको हमसे अलग नहीं कर सकती है। कृपया इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, माया हमारी स्वेच्छा को भ्रमित कर सकती है लेकिन हमारी स्वेच्छा को हमसे अलग नहीं कर सकती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात है। माया अनादि काल से हमारी स्वेच्छा को भ्रमित कर रही है, हमें कृष्ण की सेवा नहीं करने दी है उसने, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी स्वेच्छा को माया अलग कर हमसे ले लेगी। यानी कि जब भी हम चाहें हम कृष्ण की तरफ मुड़ सकते हैं, उन्मुख हो सकते हैं, और कृष्ण हमेशा हमको स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यानी चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी रहा हो, चाहे कुछ भी हो, वह भक्तों का संग प्राप्त करके सीख सकता है कि वह अपनी स्वेच्छा को कृष्ण की सेवा में कैसे समर्पित करे और कृष्ण की तरफ उन्मुख होना कैसे सीखे। ठीक है, तो यानी कि स्वातंत्र का गुण भगवान में भी है और सूक्ष्म रूप से जीवात्मा में भी है। भगवान एक व्यक्ति है और जीवात्मा भी एक व्यक्ति है, ये ध्यान देना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जीवात्मा का भगवान से प्रेममय संबंध है। तो अगर स्वतंत्रता ना दी जाए जीवात्मा को भगवान के द्वारा, तो वह एक जड़ पदार्थ की तरह हो जाएगा और उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे सामने एक टेबल रखी है, तो अब इस टेबल की कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये कभी भी यहां से हिलने वाली नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बैठा हो तो अपनी इच्छा से बैठा रहता है और इच्छा से चला जाता है। तो यानी कि स्वतंत्रता और व्यक्तित्व, ये जीवात्मा का गुण है, शाश्वत रूप से सनातन रूप से उसके संग रहता है। सनातन का अर्थ आप जानते ही हैं, जिसका ना तो आदि है ना अंत है। मुक्तावस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है, मतलब भगवान के धाम में। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है, फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति यह समझ नहीं पाता या भूल जाता है, भूली हुई अवस्था में रहता है कि वह कृष्ण का अंश है, उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, तो वह सेवा की वृत्ति को अपनी इंद्रियों पर आरोपित करता है और इंद्रियों की सेवा में लग करके व्यक्ति दुख पे दुख भोगता रहता है। इंद्रियों की सेवा करके ही वह एक के बाद एक जन्म लेता रहता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये संघर्ष अनादि काल से चल रहा है। और संघर्ष क्यों है ये भी देख लीजिए। आंखें कुछ सुंदर रूप देखना चाहती हैं, हाथ कुछ स्पर्श करना चाहते हैं, कान कुछ और सुनना चाहता है, जीभ कुछ और करना चाहते हैं। जैसे मानिए कि एक व्यक्ति है, उसकी 5 या 6 इंद्रिय पत्नियां हैं और हर पत्नी अपने भोग की तरफ जा रही है, तो संघर्ष ही है। और बहुत बार जब इंद्रिय संयम भी करना चाहता है, तब भी इंद्रियां उसको बहुत तकलीफ देती हैं, उसको खींचती हैं अपनी तरफ। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। ध्यान देना चाहिए कि भगवान विष्णु जो है ये कृष्ण के स्व अंश हैं, ये भी भगवान ही हैं, लेकिन भगवान से ही आए हैं, भगवान कृष्ण से आए। शिव जी का अलग तत्व है, वो प्रायः भगवान विष्णु के समान है, और ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु भगवान ही ब्रह्मा जी बन जाते हैं, अगर कोई जीव ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य नहीं होता है। कर्षति, ये संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। इसको हम अधिक स्पष्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने 4वें अध्याय में इसको समझा दिया था। छोटा छोटा बात हम बताना चाहते हैं। मन में इस जगत के किए गए कार्यकलापों की वजह से संस्कार बनता है, उस संस्कार से संस्कार कहें या इच्छाएं आती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को फिर अगला शरीर धारण करना पड़ता है। तो भौतिक कार्यकलाप करने का आधार जो है वो पहले की गई इच्छाएं हैं, और अगर भक्तों का संग नहीं मालूम होता है तो व्यक्ति उन्हीं इच्छाओं में फंसा रहता है, उसी से राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, और भौतिक जगत में आसक्ति होने के कारण व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये मुख्य बात है। इस प्रकार से मन बार बार हमारे भव सागर की का कारण बन जाता है। लेकिन जब मन सतगुण में होता है तब वो समझ पाता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, ये सब भक्तों संग में होता है। और रजगुणी व्यक्ति वह इस जगत में महान बनना चाहता है तो बार बार उसको इस जगत में कष्ट झेलते हुए कार्य करने पड़ते हैं, इसीलिए प्रभात बोल रहे कष्टकारक है। तमोगुणी व्यक्ति तो जानवर की योनि प्राप्त करता ही है, ये आप लोग 14वें अध्याय में सुन चुके हैं। लेकिन इस श्लोक में स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। यानी कि जीव जो है वो सनातन रूप से कृष्ण का अंश है और जब मन और बुद्धि मन और इंद्रियों का आवरण समाप्त हो जाता है भक्ति के द्वारा तो फिर वह भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपनी व्यष्टि रूप में प्रकट होता है, मतलब आध्यात्मिक जगत में हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है जो कि सच्चिदानंद होता है, वह प्राप्त होता है और उसके द्वारा भगवान की अनुभूति कर पाता है। माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्य मतिसृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्वम अनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। बहुत सुंदर बात है, जैसे कोई कैदी जब जेल में जाता है तो उसे जेल के कपड़े पहना दिए जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आता है तो प्रायः क्या वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है जो एक सभ्य व्यक्ति पहन सकता है या पहनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ऐसे ही व्यक्ति भगवान के धाम जाता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर चिन्मय स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त हो जाता है और वह हमेशा हमेशा के लिए प्रेममय संबंध में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ है ही नहीं इस जगत में, तो कोई उपलब्धि है ही नहीं, क्योंकि फिर मृत्यु के चक्र में फंसा रहना पड़ेगा व्यक्ति को। समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एकमात्र उपलब्धि यही है कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण हो जाए और कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। इस जगत की छोटी छोटी उपलब्धियों में हमें फंस करके धोखा नहीं खाना चाहिए, तैयारी करना चाहिए कि मानव जीवन के द्वारा मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो आपने सीखा यह कि वो पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है और इस प्रकार से भगवान का अनुभव कर पाता है आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा। ओके, स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंत यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, अर्थात जिस प्रकार भगवान का शरीर स्पिरिचुअल होता है, चिन्मय होता है, शाश्वत होता है, ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है, वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं, सेवक हैं, इन जीवों का भी जो शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, वह चिन्मय होगा, स्पिरिचुअल होगा, ज्ञानमय, शाश्वत और आनंदमय होता है और इस प्रकार से असीमित सुख का वह अनुभव करते हैं भगवान की सेवा करते हुए। ममे वांशः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ का टूटा खंड या अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते, इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। ये पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं जो हमने शुरुआत में चर्चा में बोला था कि घटाकाश और पटाकाश नहीं बोल सकते। आकाश एक भौतिक वस्तु है और उसकी तुलना हम जीवात्मा से नहीं कर सकते जो कि जीवात्मा पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। और ध्यान देना चाहिए कि जब बोल रहे हैं कि अंश है तो शाश्वत रूप से भगवान से अलग है। ऐसा नहीं है कि भगवान को काट करके कुछ जीवात्माओं को बनाया गया है या ब्रह्म ज्योति को काट करके कुछ जीवों को बनाया गया, ये गलत बात है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि शाश्वत रूप से आत्मा का अस्तित्व है, बस अनादि काल से हम भगवान को भूले हुए। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती है, हाँ ये पढ़ लिया हमने, ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है, यानी हमेशा से हम लोग हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन यथा देहे, वह अंश अब जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। शारीरिक बंधन से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति मर जाए, कहने का अर्थ है भौतिक इच्छा को खत्म करें जिसके कारण से उसको बार बार भौतिक शरीर प्राप्त हो रहे। मैंने पहले भी समझाया था, अगर किसी प्रकार का भौतिक काश रह जाता है, काश की प्राप्त हो जाता है, काश वो हो जाता है, काश वो हो जाता, तो हम अपने फिर से हमको भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो यानी अगर एक बार आध्यात्मिक आकाश में हम लोग अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए हम भगवान के संग रह सकते हैं। तो देखिए, ये जो कृष्ण भावना आंदोलन है ये कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ केवल हम ये बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, ऐसा नहीं है। कैसे हम भगवान के साक्षात संगति करने के योग्य बन जाएं, इस तरफ ये ट्रेनिंग देने वाला ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है। और इसको अगर ठीक प्रकार से व्यक्ति अनुशीलन करे तो वो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। ये तो स्पष्ट है कि स्वर्ण की जो खान है उसमें बहुत मात्रा में स्वर्ण होता है, लेकिन उसी से निकाला हुआ एक छोटा सा कुंडल उसमें भी वही स्वर्ण व्याप्त है जो कि स्वर्ण जो स्वर्ण उसमें खान में उपलब्ध है। लेकिन खान की मात्रा में और एक कुंडल में पाए जाने वाले स्वर्ण की मात्रा में अंतर है। अर्थात गुणात्मक रूप से जीव भगवान के ही समान है, सच्चिदानंदमय है, लेकिन इस समय अपनी पहचान इस असत शरीर से करने के कारण बद्ध रहता है। लेकिन हर परिस्थिति में, चाहे बद्धावस्था हो चाहे मुक्तावस्था हो, भगवान का ही अंश है। और जब वो बद्धावस्था में रहता है तो वह अपनी इंद्रियों से संघर्ष करता रहता है, लेकिन जैसे वो मुक्तावस्था में आता है या मुक्त होने की प्रक्रिया होती है तो उसके इंद्रियों से संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर इंद्रियां केवल कृष्ण की ओर उन्मुख होने लगती है। तो ये हमने इस श्लोक में सीखा। हरे कृष्णा।